ओम शांति। आगे वाले सोफे पे आ सकते हैं भाई लोग, आ जाओ। अभी कोई नहीं है वीआईपी, आ जाओ आगे। आज की मुरली से कौन है हम सब? ठीक बोल रहे, बोलो। पूर्वज और पूज्य हैं हम सभी। राज्य अधिकारी कौन बनेंगे? तीन मुख्य बातें और बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत गहरी, याद करो। स्वराज्य अधिकारी, मैं मिले जुले शब्द बोलता हूं, आपको याद आ जाएगा। विश्वराज तख्त पर कौन बैठेंगे? याद आ गया ना? जो बाबा के दिल पर। कैसे? बहुत अच्छे शब्द थे, स्वतः और सदा ही बैठे हैं। एक नेचुरल स्थिति ऐसी है कि दिल तख्त नशीन है, भगवान के दिल पर बैठे हैं। सोचना है कौन बैठ सकते हैं, कौन बैठ सकते हैं। पिछले सीजन में बाबा ने इसका उत्तर दिया था, बाप के दिल तख्त पर कौन बैठ सकते हैं। सुशील आ गया, इसको याद होगा। पिछले सीजन का बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठ सकते, तीन क्वालिटी बताई थी। पहले बताया था जिन्होंने अपने दिल पर बाबा को बैठाया है, सीधी सी बात है ना। दूसरा, जो मास्टर सर्वशक्तिवान है। तीसरा, जो सदा संतुष्ट हैं। संतुष्ट मणियां भगवान को बहुत प्रिय हैं, और संतुष्ट रहना ये अपने हाथ में या दूसरों के। आज की मुरली में लास्ट में मान की इच्छा, कामनाएं। अगर ये इच्छाएं कामनाएं रहती हैं तो आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जहां इच्छाएं हैं वहां असंतोष है, अच्छा नहीं बनने देती, आत्मा को कमजोर करती हैं इच्छाएं, क्योंकि उससे व्यर्थ संकल्प बहुत चलने लगते हैं। विश्वराज अधिकारी कौन बनेंगे? दूसरी पॉइंट, आदि से और अंत तक, स्वप्नों तक भी संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता नहीं। तीसरा और गहरा, तीसरा बोलो, पहने पीछे पीछे नहीं, आगे हो जाओ भैया, आप ही आगे हो जाओ। तीसरा बोलो और गहरी बात, चारों माताएं, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। चारों सब्जेक्ट में क्या? मार्क्स अच्छे, आज बाबा ने अच्छे कह के ही छोड़ दिया। चारों सब्जेक्ट में मार्क्स फुल अच्छे, तो 50% भी होते हैं ना, जो फेल होते हैं उनके 50 आ जाएं तो बहुत अच्छे आ गए भाई। चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, वो भी आदि से अब तक, कहा ना ये आदि से अंत तक। सहनशीलता के बारे में बोलें, क्या बताया? माताएं बोलेंगी, मरना, सहन करना, याद आया? हम कब तक मरते रहेंगे? बाबा ने कहा, पता नहीं किसने शब्द चालू कर दिया, मैंने तो नहीं किया। बाबा को लगता होगा मैं इनको जीवन देने आया हूँ, ये मरने की बात करते रहते हैं। हम ही मरते रहेंगे, थोड़ा वो मरे, थोड़ा हम मरे। क्यों हम सहन कर रहे हैं? सबसे सुंदर बात है, सभी इसको अपने चित्त में समा लें तो सहन करना आनंददायक हो जाएगा, कष्टदायक नहीं। ये फीलिंग ही नहीं रहेगी हम सहन कर रहे हैं, सहन करने वाले को जब तक ये फीलिंग है मैं सहन कर रही हूँ, तो वो सहन शक्ति नहीं कहलाएगी, उदास करेगी, मैं बहुत सहन कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता मैंने कितना सहन किया है। कहते हैं ना लोग, तुम्हें क्या पता, तुम यहाँ होते तो पता चल जाता, दिन में तारे दिखते हैं, यहाँ तो लोगों को रात को भी नहीं दिखते हैं। लास्ट पॉइंट थी, तो क्यों सहन कर रहे हैं, बाबा की आज्ञा है। बहुत आनंद आएगा। मुझे उसी दिन की एक घटना याद है, मैं ऐसे ही यहाँ क्लास कराने आया था, तो जब जा रहा था एक भाई आया यहीं का, कहा आज मुझे बहुत खुशी है। मैंने पूछा क्यों, कि इसने मुझे, किसी का नाम लिया, इसने मुझे बहुत बुरा बुरा बोला और मैं सब सहन किया और मुझे आज याद था, मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ कि भगवान की आज्ञा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। उसी दिन की बात है। तो अगर हम ये मान लें भगवान की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, और जो उसकी आज्ञा का पालन करके सहन करते हैं उनमें क्या आ जाएगी, सहन शक्ति आ जाती है। देखिए, सहन के साथ दो शब्द हैं, सहनशील, सहन शक्ति। एक शक्ति है ये बहुत बड़ी, शील माना चरित्र, तो ये बहुत बड़ा चरित्र भी है, ये हमें बहुत चरित्रवान बनाता है। जो सहन करता है, घरों में भी आप देखो, जो सहन करते हैं वो बहुत सुखी हैं, जो क्रोध करते हैं वो दुखी रहते हैं, औरों को भी दुखी करते हैं स्वयं भी। तो हमें सहनशील बनना है। और मान की इच्छा पर तो बाबा सदा ही बोलते हैं, और इस बात को हमें बहुत गहराई से जान लेना है। मान की इच्छा करना किसकी निशानी है, नहीं अभिमान नहीं, हर जगह अभिमान नहीं होता। मान की बहुत इच्छा रखना अर्थात खाली है आत्मा, भरी हुई नहीं है, तृप्त नहीं है, तो इधर उधर ढूंढती है, यहाँ से मान मिले, यहाँ नाम हो जाए, आखिर कभी तो हमारा नाम हो जाए। पीछे भी ऐसी मुरली चल चुकी है ना, व्यक्त ऐसी चली है बिल्कुल, कभी तो हमें भी स्टेज पे, तब यहाँ ओम शांति भवन में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, तब की वो मुरली थी, तो लोगों को दिखता था, मधुबन वालों को फील होता था सारी मेहनत हम करते हैं, लोग बाहर से आते हैं 15 मिनट भाषण किया, उनके फोटो छप रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, वाह इसने कितना अच्छा बोला, और हमने एक मास जो मेहनत की हमें कोई पूछता ही नहीं। तो बाबा की मुरली चली थी, बहुत अच्छी मुरली चली, आज भी वो सब थे। तुम्हारा नाम कहाँ है, बाप के दिल पर, बाबा के पास तुम्हारा नाम है, उधर हो या ना हो। लेकिन इन सब के लिए बहुत गहरे आत्मसंतोष की जरूरत है, नहीं तो आत्मा देखती तो है ना सब कुछ, कि जो कुछ नहीं कर रहे उनका नाम हो रहा है, जो बहुत कर रहे हैं उनको कोई पूछता नहीं, तो संकल्प चलना नेचुरल सी बात है। लेकिन बहुत गहरा संतोष, जो पाना था सो पा लिया, जिसको पाने की इच्छा थी, ये तो हमने कभी कहा ही नहीं था, हे प्रभु जब तुम आओ हमारा भी नाम बाला कर देना, कहा था कभी, हे प्रभु जब आप आओ हमें बहुत मान दिला देना, ये तो कहा नहीं था, कहा ये था एक बार तुम्हें देख लें, ये कहा था ना, एक बार दिल भर के तुम्हें देख लें, तृप्त हो जाए, नैन भी तृप्त, दिल भी तृप्त हो जाए। लेकिन उसको मिलने के बाद फिर अनेक इच्छाएं होने लगती हैं। मैं आपको इसके बारे में दो बहुत सुंदर बात बताता हूँ, बहुत सुंदर हैं, आप उसे याद रखेंगे, बहुत आनंद होगा। मुझे पहले जब से सुनी तब से उनका नशा रहा। बच्चे तुम्हें तो भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, है ना? बहुत अच्छी बात, चिंतन में लाएं इसको। भगवान मान दे रहा है, आते ही कहता है देखो जो सबसे हाईएस्ट है, आज भी था ना, तुम सबसे ऊंचे बाप की किसको याद है आगे, पहली रचना हो, ऐसा जो हाईएस्ट है जिसके परे कोई नहीं है, जिसकी तुलना किसी से नहीं, जिसके समान कोई नहीं, वो हमें कहता है तुम महान हो बच्चे, पूर्वज हो, सारा संसार तुम्हारी ओर देख रहा है, तुम्हें सबकी पालना करनी है। ये नहीं कहता मैं सबकी पालना करूंगा तुम चुप बैठो, कितना मान देता है, देता है या नहीं, फील करें, इसे स्वीकार करें। तो बाबा ने कहा बच्चे मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है। अगर हम इस चिंतन में आएंगे तो मान की इच्छा खत्म हो जाएगी, हम में तृप्ति रहेगी। बहुत अंदर रखा तुमने भी माताओं की तरह, माताएं बैग के अंदर एक पर्स में रखती है मोबाइल, खोलने में देर लगती है। अच्छा दूसरी बात सुनो, वो बहुत गहरी है, ये वो बात है 77 की मुरली से है, इस पर भी सबको चिंतन करना है और इसको अपने गुड फीलिंग में लाना है, अपने स्वमान को पहचानना है, अपने महत्व को जानना है, हम हैं कौन, कौन है, पूर्वज। अब दूसरी बात सुने आप बाबा की, बाबा ने हम सबको जितने स्वमान दिए हैं वो सचमुच अगर हम उन पे चिंतन करें तो समझ में आएगा हम कितने बड़े हैं। आज भी था, बड़े हो तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। इनको चिंतन में लाएंगे सभी तो वो सुने बाबा की बात। आप तुम हो इस धरा पर, बाबा के शब्द बोलता हूँ एग्जैक्ट, तुम इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, तुम्हारे प्रकाश से जग प्रकाशित होता है। कितनी बड़ी बात है, ये मान शान है टिमटिमाते हुए दीपक, आज मिलता है कल नहीं, आज जलेंगे कल बुझेंगे, फिर जलेंगे बुझेंगे, ये मान शान है टिमटिमाते दीपक। तुम इन दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। बहुत सुंदर लाइट है ये हमारे लिए, हम सूर्य के समान जिनका प्रकाश सारे संसार में फैलता है, हम पहचाने इस बात को, हम अपने को साधारण समझ लेते हैं, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूँ, मेरा तो कोई मान नहीं, मैं तो सेंटर इंचार्ज भी नहीं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, लोग इनमें देखते हैं ना सब कुछ, मान शान हो, इंचार्ज हो, पैसा बहुत हो, पूछताछ बहुत हो, लेकिन भगवान की नजरों में ये कुछ भी नहीं है। वो हमें याद दिलाता है सब रियलाइज करें कौन है हम, सूर्य के समान जग में प्रकाश फैलाने वाले, और मानशान क्या है, टिमटिमाते हुए दीपक। तो ये हमें क्या प्रकाश देंगे, प्रकाश तो हमें देना है, सब इसको अपने चिंतन में लाएं तो ये मान की अभिलाषा छोटी चीज लगेगी। मंदिरों में देखो, हमारे मंदिरों में हमें मान देने के लिए भक्तों के दरवाजा खुलने की इंतजार करते रहते हैं, भीड़ लगाते हैं, हम बहुत बड़े हैं और मान शान बहुत छोटी चीज है, इससे बाहर निकलना है। जिसको योगी बनना है उसको इन सब से बाहर निकलना है। मुझे एक संकल्प आ रहा है कुछ दिनों से, आपके सामने रख देता हूँ, आने वाला समय योगियों का होगा। समझते हैं ना ये भाषा। कभी संसार में किसी का समय होता है, कभी किसी का समय, सदा एक का समय नहीं चलता। इतिहास पढ़कर देखें, कभी कोई संसार में छाया हुआ है तो कभी कोई छाया हुआ है, कभी किसी का प्रभाव पड़ रहा है तो कभी किसी का पड़ रहा है। अब समय आ रहा है योगियों का समय होगा, जिन्होंने अपने को योगयुक्त बनाया, योग्य बनाया, महान बनाया, उनके द्वारा महान सेवाएं होंगी, उनकी दृष्टि से ही होगा, उनके दर्शनों से ही होगा। वो दर्शनों की प्रथा यहीं से प्रारंभ हो जाएगी कि उन्हें देखकर ही लोग अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, उन्हें देखकर ही सुख चैन पाएंगे, उन्हें देखकर ही उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा समय आ रहा है तो सभी को बहुत ध्यान देना है। तो कोई भी इच्छा हमारे संकल्पों को बहा न ले जाए, उसमें न चले जाए हम कि एक छोटी सी इच्छा हुई और सारा दिन बिता दिया उस उलझन में, एक ही संकल्प कि देखा इनका नाम हो गया मेरा नहीं, इनके पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो ये है, इसी उलझन में सारा दिन बीत गया। सारा दिन कितना बड़ा है, आज भी बाबा ने याद दिलाया, तुम्हारा एक सेकंड, ये बाबा याद दिलाते हैं ना। और दिन बीत जाए उलझनों में तो न केवल वेस्ट हुआ बल्कि माइनस हो गया, कम हो गया, घट गया। संकल्पों की उलझन में हमने अपनी शक्तियों को घटा दिया। चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। किसी को ज्ञान में बहुत रुचि होती है, योग कम। किसी को ज्ञान योग अच्छे लगते हैं, कोई धारणा की बात ढीली। कोई सेवाओं में बहुत रहते हैं तो ज्ञान योग ढीला, मुरली नहीं सुनते। चारों सब्जेक्ट फुल हों, पीछे भी आ चुका है, जो ज्ञानी है उनकी पहचान समझदार। याद करो फिर से, अभी की तो मुरली है, शायद 15 दिन हुए होंगे। जो ज्ञानी है उनकी पहचान वो समझदार, धोखा नहीं खाएंगे। योगी माना क्लीन और क्लियर बुद्धि, समझते हैं ना इसको। बहुत माल भर लिया होता है किसी ने, बहुत माल भरा है। आज एक बहन मिली मुझे, नीचे नर्सिस की ट्रेनिंग हो रही ना, ट्रेनिंग होती है नीचे नर्सिस बहनों की, ट्रोमा सेंटर के पास हॉस्टल भी बना हुआ है। तो कहा ये समस्या आजकल बहुतों की हो रही है, जो माताएं और पिताएं लौकिक बैठे हैं वो ध्यान दें अपने बच्चों को, इन चीजों से बचाया जा सकता है। तो कहा हम पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं रहता। तो मेरे साथ में यही मधुबन आया था, दिन में हॉस्पिटल से कार में चली, ज्ञान सरोवर जाना था, तो मुझे पूछा मैं जो पढ़ती हूँ कुछ भी याद नहीं रहता। मैं हंसी में पूछा तो माल बहुत भर लिया होगा। हंसने लगी वो भी आपकी तरह, कहाँ भरते माल, बुद्धि में। अब हमने अपना गिलास दूध से भर लिया हो, ऊपर से नया दूध डाल रहे हो तो वो तो बाहर गिरेगा ना। दूध तो अच्छी चीज है पर माल बहुत इधर भर लिया हो, कैसा माल, सब जानते हैं ना कैसा माल भरते हैं आजकल लोग। तो देखिए अगर अंदर में गंदगी बहुत भर ली तो गंदगी को आकर्षित करेगी, अच्छाई भर ली तो अच्छाई को आकर्षित करेगी। मैंने उसको ये बताया तो आप ही बोलने लगी ये बात बिल्कुल ठीक है। क्लास में हमारी टीचर जो कुछ पढ़ाती है वो तो हमें भूल जाता है, लेकिन अगर उसने हाथ ऐसे कर दिए वो सारा दिन याद रहता है, उसने हाथ ऐसे किए थे, क्या पढ़ाया वो नहीं, वो गया। कहा जो वहां थोड़ी भी खराब बात हो रही है, क्लास में स्टूडेंट को किसी को डांट दिया है, किसी का और कुछ हो, वो सब याद है, लेकिन क्या पढ़ाया वो याद नहीं। निगेटिविटी निगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो आजकल बच्चों को जो ये सब बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है आजकल, अभी 4-5 दिन पहले मुझे एक बहन का फोन आया, कहा मैं एमटेक कर रही हूँ, एमटेक इंजीनियरिंग करने के बाद की 2 साल की और डिग्री हायर एजुकेशन, कहा फाइनल पेपर है और मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ कुछ याद नहीं रहता है, और ये बता के रोने लगी, क्या करूं मैं। मैंने उससे भी यही पूछा, टीवी कितना देखती हो, नहीं देखती, बिल्कुल बंद किया हुआ है, इंटरनेट, कहा वो भी छोड़ दिया है, बहुत देखा पता चला इसमें गंदगी है वो भी छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ देख लिया जीवन में 10 साल वो भर गया था ना, तो वो काम कर रहा है। तो नई चीज जो अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं वो साथ साथ बाहर जा रही हैं। उसने कहा कि मैं आधा घंटा अभी पढ़ा और मैं पूछ रही थी मैंने क्या पढ़ा, एक लाइन याद नहीं, इसलिए आपको फोन किया, मेरे फोन नंबर पता नहीं कहाँ से सबके पास पहुंच गए, गांव की माताएं भी करती हैं, आपका नंबर मिला है हमें। तो इससे सब बचाएं अपने को। क्लीन बुद्धि का अर्थ है बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करें, और ये अपने हाथ है। क्या तरीका है इसका, क्या तरीका है, छोटा सा तरीका बोलो। नहीं, व्यर्थ में रुचि न हो, अपने को समझा दें ये व्यर्थ का समय नहीं है, बाद में चल के करेंगे, ये व्यर्थ का समय नहीं है। बार बार अपने को समझाएंगे तो व्यर्थ सुनने की रुचि नहीं रहेगी, व्यर्थ देखने की रुचि नहीं रहेगी, क्लियर होगी बुद्धि, धारणा वाले की पहचान डबल लाइट, सेवाधारी की पहचान निमित्त और निर्माण, साथ में निर्मल भी। तो चारों सब्जेक्ट हैं हमारे पास। ज्ञान का बल हमें बढ़ाना है, ज्ञान में हमें फुल मार्क्स लेने हैं, पूरे नंबर ज्ञान में लेने हैं, किन्हें मिलेंगे नहीं, अब और सोचो, ज्ञान में पूरे नंबर लेने हैं किन्हें मिलेंगे, गणेश, तुम तो गणेश हो ना, किन्हें मिलेंगे सोचो, जिनका मुरली में बहुत रस होगा। इसको जानकर लोग क्या करते हैं, सारा दिन मुरली पढ़ रहे हैं, आजकल मुरलियां मिलती हैं जहां तहां, तो जब टीचर मुरली सुनाती है क्लास में तो मुरली लेके बैठते हैं, शायद ये देखने के लिए भी कुछ गलत तो नहीं पढ़ रही बहन जी, ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, वो पढ़ते रहते लाइन भी खींचते रहते, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया, ये मुरली सुनने का तरीका नहीं है, मुरली का आनंद लेना है। भगवान हमसे बात कर रहा है, इसका सुख मिल जाए। और भी ज्ञान के सब्जेक्ट में पूरे नंबर उन्हें मिलेंगे जो ज्ञान चिंतन करेंगे, केवल मुरली तक सीमित नहीं, जो ज्ञान सुनाएंगे, और फाइनल बात ज्ञान को अपनाएंगे, ज्ञान स्वरूप जीवन हो गया, ये है ज्ञान के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेना। आत्मा का पहला गुण हम बताते हैं ना, क्या है, ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान हमें कहता है ये करो ये न करो ये करो, ऐसे रहो ऐसे बोलो ऐसे देखो, उसका हम स्वरूप बन जाएं, ये आत्मभिमानी स्थिति होगी। योग अभ्यास उन्हीं का सफल होता है जो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। योग में अगर पूरे मार्क्स लेने हैं, कुछ बातें याद रखेंगे बस, बाबा मेरा है, मेरा केवल कहने के लिए नहीं, मेरा बाबा गीत गा दे, गीत गाए तो मेरा बाबा और नीचे आए तो सब लोग मेरे हैं, तो सभी हमारे, पर मोह ममता अटकाए हुए हो कहीं, मेरा बाबा इसका अर्थ है बाबा से बहुत बहुत अपनापन, जानते हैं ना अपनापन माताएं, अपने बच्चे को देखती हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती मेरा बच्चा अपनापन है, फीलिंग है। बच्चे को भी माँ से अपनेपन की फीलिंग है, बाबा मेरा है, ये फीलिंग हो जाए। दूसरी बात, बुद्धि इतनी क्लियर हो कि बाबा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, पांचों स्वरूप स्पष्ट दिखाई दें, क्लीन बुद्धि का ये लक्षण होगा। बुद्धि हमारा नेत्र है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। और याद रखेंगे, अपनी बुद्धि को जो बहुत स्वच्छ कर देंगे, क्लीन माना स्वच्छ, अपनी बुद्धि को जो बहुत स्वच्छ कर देंगे, उन्हें तीनों लोक और चार युग दिखाई देंगे। ये अंत में होने वाला है। हमने क्या कौन कौन से जन्म लिए, हम कहाँ हीरो एक्टर थे, कहाँ बड़े थे, कहाँ छोटे थे, कहाँ उच्च पद पर थे, कहाँ बिल्कुल नीचे थे, वो सब पता लग जाएगा बहुत आत्माओं को, सबको तो नहीं, पर जिन्होंने अपनी बुद्धि के नेत्र को स्वच्छ किया है उन्हें दूर दूर दिखाई देगा। और ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यहाँ बैठे ही दूर का भी दिख रहा है, यहाँ भी दूर का, यहाँ इस संसार का। तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। तीसरा योग के लिए कर्म योग। ऐसे नहीं हम कर्म कर रहे हैं तो सब कुछ भूले हुए हैं, कर्म करते भी, भोजन खाते भी, बनाते भी, अपनी सेवाएं करते भी बाबा की याद की प्रैक्टिस चलती रहे, कर्म योग। और चौथी बात, श्रेष्ठ स्वमान। कर्म योग में अशरीरीपन भी, बिल्कुल देह से न्यारापन और स्वमान, ये सब योग में फुल मास दिलाने के आधार हैं। मुझे एक घटना याद आ गई दो दिन पहले की, बड़ी अच्छी, आपको सुना देता हूँ। घटना है टोली का महत्व, सुनेंगे? टोली सबको प्रिय है ना, है ना? तो एक बैंक मैनेजर कुमार मेरे पास आया चार दिन पहले, नीचे शांतिवन में। अभी मैं तो जानता नहीं था, परिचय दिया तो बोलने लगा, मुझे बहुत शांति मिल रही है, शांति बहुत अच्छी लग रही है, दिल करता है परम धाम में ही रहूं, ये शरीर छोड़ दूं, घर चलूं। अब मैंने इस शरीर को दो दिन से इसलिए भोजन भी नहीं खिलाया है। जब उसने बोला तो मैं समझा कुछ गड़बड़ तो है। मैंने उसको देखा ध्यान से, आंखों से पता चला इस पे किसी आत्मा ने पकड़ लिया इसको किसी ने। मैंने कहा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ऐसा करो कल इसी टाइम मेरे पास आना, 1008 बार याद करना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सोचा ये कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पता था ये आत्मा इसको करने तो नहीं देगी, वो चला गया। दूसरे दिन उसी टाइम आया, मैंने पूछा कर लिया, कहा 108 बार लिखा है मैंने, बस 1008 बार तो नहीं हुआ मेरे से। फिर वही बोलने लगा, मैं सतयुग में भी आना नहीं चाहता, सतयुग में क्या है, परम धाम अच्छा है ना अपना घर। मैंने कहा पर तुमने तो 12 साल से ज्ञान ले लिया ना कि हाँ, तुम्हें कहा फिर तो आना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें तो स्वर्ग, मैं नहीं चाहता आना। अब मैं सोचा इसे कौन दिमाग मारे, मैंने सोचा टोली खिला के इसको विदाई दूं। जब मैं उसको टोली देने लगा तो मुझे ख्याल आया कि क्यों न जरा सा अभ्यास करके देख लिया जाए, तो मैंने जस्ट साथ में टोली लिया और एक ही बार याद किया मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, संकल्प किया इस टोली को खा के ये मुक्त हो जाए। बाबा को जरा कहा तुम्हारा बच्चा है कितना अच्छा, 12 साल से ज्ञान में, कुमार बैंक मैनेजर, तो ले गया, खा ली उसने। अगले दिन फिर आया, 12 बजे आ गया, बड़ा खुश, मैं मुक्त हो गया भाई। अब उसे पता चला कि गड़बड़ हो रही थी मेरे साथ, कहा मैं आपको क्या क्या बोल रहा था, कहा मैं बोल तो रहा था पर मुझे लग रहा था मैं तो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, उसे फील हो रहा तब ये वो मुक्त हुआ। तो मैंने कहा टोली का बड़ा महत्व है भाई, टोली खा के वो आत्मा तृप्त होके चली गई उसको छोड़ के। फिर मेरे से पूछा कि यहाँ इतनी अच्छी जगह है शांतिवन और मेरा भी कुछ मेरे में कमी नहीं है, प्योरिटी मेरी अच्छी, मैं योग अच्छा करता हूँ, ये आत्मा क्यों मेरे पे अटैक कर दिया? ये प्रश्न तो उसका ठीक था। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी से हिसाब किताब होता है ना किसी का, और कभी कभी ये आत्माएं शांति पाने के लिए भी ऐसे काम कर लेती हैं। एक समय था शांतिवन में जब बाबा आते थे तो हर टर्न में दो आत्माओं को आना ही था, एक आ गई तो हम सोचते दूसरी भी आएगी, दो ही आती थी और चिल्लाती थी जोर से चिल्लाती थी, सब चुप देखने लगते थे, बाबा भी चुप बैठ जाते थे, फिर बाबा कहते थे अब इधर देखो साक्षी हो जाओ। तो ये आत्माएं शांति लेने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए भी, कुछ अच्छी आत्माएं भी, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो वहां आई हो बाबा से मिलने कई बार, फिर गड़बड़ हो गई, भटक गई, तो फिर वो आकर्षण उनको वहां खींच लाता। वो आकर्षण आत्माओं के लिए तो कहीं भी आना जाना इतनी देर का काम है ना, तो जहां वो आए हैं, जहां से उन्हें सुख मिला है, आकर्षित होके वो वहां वहां आते रहते हैं। हमें धारणा के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। कुछ धारणाओं पे हम ध्यान देंगे, एक तो बाबा ने जो पिछली मुरली में कहा डबल लाइट, बहुत हल्के रहना है। कौन रह सकते हैं हल्के? जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जो इस रामा को बाबा के साथ को बहुत अच्छी तरह अनुभव करते हों, नहीं तो एक छोटी बात भी आत्मा को चिंतित करेगी। लेकिन नशा हो गया हो, बाबा हमारा साथी है, वही जिम्मेदार है, तो हल्के रहेंगे। परिस्थिति आई है चली जाएंगी, परिस्थितियों से पावरफुल हम हैं, इस बात से हल्के रहेंगे। नहीं तो संकल्प हो गए ये परिस्थिति क्यों आ गई, बाबा है फिर भी मेरे साथ क्यों हो रहा है, और तो सब सुखी हैं मैं ही दुखी क्यों हूं, कई सब सोचते हैं तो भारी होते रहेंगे। हल्कापन, संतुष्टता, बहुत निरहंकारिता, बहुत अच्छी सहनशीलता, इन पे सभी ध्यान दें। ये धारणाएं होने से बाकी सारी धारणाएं सहज ही जीवन में आ जाती हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अहंकार पर विशेष ध्यान दें, उसमें भी मैं और मेरा, जिसको छोड़ने से हमारे जीवन में बहुत दिव्यता आ जाती है। ध्यान दें इन धारणाओं पे। सेवा, निमित्त निर्माण, बिल्कुल निरहंकारी। अगर सेवाएं हमारे अहंकार को बढ़ा दें तो क्या कहेंगे सेवाओं को? किसी किसी की सेवाएं उसके अभिमान को बढ़ा देती है। मान लो किसी को किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज ही बना दिया, उसमें अभिमान हो गया मैं मालिक हूं, और वो अपने साथियों से बुरा व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? क्या होगा सब जानते हैं आप, झगड़ा भी होगा, और ये होगा सत्ता का दुरुपयोग, और इससे उसका भाग्य कटेगा, उसको स्वयं बहुत सहन करना पड़ेगा, फिर कष्ट आएंगे उसके सामने। लेकिन जो मनुष्य अपनी सत्ता से दूसरों को सुख देते हैं, अपने मधुर बोल से दूसरों की पीड़ा हरते हैं, अपने साथ से दूसरों के जीवन को सरल बनाते हैं, उनकी सेवाएं उनके लिए वरदान बन जाती हैं, उनकी सेवाएं उनके लिए शक्तिदायक बन जाती हैं। सेवाएं तो हम सब कर रहे हैं, किसी के लिए सेवा वरदान है तो किसी के लिए सेवा टकराव का कारण है। कोई सेवाओं का आनंद ले रहे हैं तो कोई सेवाओं में दुखी हो रहे हैं, बहुत काम है। फुर्सत का टाइम ही नहीं मिलता, योग का तो समय ही नहीं है, सारा दिन सेवाएं सेवाएं हम क्या करें। लेकिन सेवाएं पुरुषार्थ में सहायक हैं, सेवाएं हमारी बुद्धि को स्थिर करने वाली हो जाएं, सेवाएं हमारे लिए सुखदायी हो जाएं, ये है सेवा के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। पिछली बार भी आ गया था, आपको याद हो, मैंने शायद यहां भी क्लास कराई, तीन चीजों के आधार पर फाइनल पेपर में नंबर मिलेंगे। पहला था कितनों को योग्य बनाया, दूसरा था कितनों को सुख दिया, और तीसरा था स्वयं कितने शक्तिशाली बनकर रहे। परिस्थितियों में माया के सामने समस्याएं आती हैं, स्वयं कितने शक्तिशाली बनकर रहे, कितनों को सुख दिया, कितनों को योग्य बनाया, तो चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगे। सेवाओं में भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं हैं, सभी सेवाएं हमें करनी चाहिए। ये बात भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको कुछ बात कहूंगा। भोली दादी बाबा से मिलने आई, हिस्ट्री हॉल था, केवल बहुत मिलते थे बाबा से, बिल्कुल पर्सनल मिलते थे, सामने ही तो बैठे होते थे, बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। उन्होंने बाबा को कहा, पता नहीं कहां से उनको संकल्प आया कि बाबा मैं तो ज्ञान देने की सेवा करती नहीं। तो बाबा का उत्तर था कि बच्ची सेवा के सब्जेक्ट में तुम्हारे 100 मार्क्स हैं। देखो उसने ज्ञान देने की सेवा नहीं की, लेकिन सेवा के सब्जेक्ट में उसके 100 मार्क्स। तो हमें याद रखना है, जो सेवा हमें मिली हो उसे सच्चे दिल से करना, उसके द्वारा सबको सुख देना, उसमें पूरे नंबर लेने का तरीका है। मुझे एक और बात याद आ गई, बाबा साकार में थे ना, रात्रि क्लास बड़ी होमली होती थी, एक बच्चा आया हुआ था, उसको बाबा ने बुलाया, गोद में लिया, कहा तुम्हें मधुवन में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? उसने कहा भोली दादी, टोली खिलाती थी ना बच्चों को, और क्या चाहिए। रात्रि क्लास बाबा की बहुत ही नशे की बड़ी सुंदर होती थी, घरेलू क्लास होती थी, सभी आ जाते थे उन दिनों। तो हम सभी सेवाओं के फील्ड में भी ध्यान रखें, हम अपनी सेवाओं से सबको सुख दें, सेवाओं का अभिमान बिल्कुल निमित्त, हम निमित्त हैं, मैं करता हूं मैं करती हूं, इस फीलिंग से जरा बाहर। देखिए कार्य तो मनुष्य है तो कार्य तो वो करेगा ही ना, हम सेवा करें, कोई इंचार्ज हो या बिल्कुल साधारण सेवा कर रहे हो, वो एक कर्म है, महत्व उस कर्म का नहीं, महत्व किसका है, वो कर्म करते हुए स्थिति क्या है। महत्व जैसे बाबा के पास महत्व पैसे का नहीं था, सुनिए ना बाबा की मुरली, गरीब एक रुपया दे तब एक एक रुपया भी देते थे, और साहूकार 100 दे 1000 दे बराबर है। तो भगवान के पास महत्व पैसे का नहीं, किसका था, भावनाओं का। तो हम अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाएंगे। आज की मुरली से प्योरिटी की बात बहुत अच्छी थी, प्योरिटी भी योग बल से ही प्राप्त होती है। कोई अपने पिछले जीवन को देखे, जब से ब्राह्मण बने कि हमारी प्योरिटी तो बहुत अच्छी नहीं है, निराश हो जाएं, इसकी जरूरत नहीं। हम योग बल से अपने अंदर पवित्रता का बल बढ़ाते चलें। बाबा के दिल तख्त पर हमें बैठना है, फिर से पहली बात के साथ एंड करेंगे, बाबा के दिल तख्त पर हमें बैठना है। तीन बातें हमने बताई थी, लेकिन और बातें, बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है जो दूसरों को सुख देते हैं। साकार मुरलियां चली हैं इस पर, बाबा के दिल पर वो आत्माएं बहुत बैठती हैं जिनके अंदर सच्चाई है। साथ में सफाई बोलते हैं, सफाई वही जिसकी हमने चर्चा की, क्लीन बुद्धि, बुद्धि में कुछ भी गंदगी नहीं, साफ है। और सच्चाई माना अंदर बाहर बिल्कुल साफ, ये नहीं कहे कुछ रे और हैं कुछ, वो नहीं, साफ स्वच्छ सच्चे जो हैं ये हैं। वो आत्माएं भी बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। तो हम सभी अपनी सेवाओं के द्वारा, अपनी धारणाओं के द्वारा बाबा के दिल में अपना स्थान बनाएं, ये हमारे ऊपर है। मुझे एक बात बहुत प्रिय लगती है, आप उस पर भी बहुत ध्यान देंगे, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसको अपना लें आज से। बाबा ऊपर से दिन में कई बार नीचे देखता है, और क्या देखता है, कुछ आत्माओं पर उसकी बहुत गहरी नजर रहती है, बहुत गहरी, देखता तो सबको है पर बहुत गहरा अटेंशन। तो बाबा देखता है ये आत्मा इस समय कहाँ है, माना किस स्थिति में है। हम इसको अपना साधन बना लें कि इस समय बाबा मुझे देख रहा है, कहाँ हूँ मैं, किस स्थिति में हूँ, किन संकल्पों में हूँ, किन भावनाओं में हूँ, कितने स्वमान में हूँ, नशे में हूँ। तो ये बात हमारे अटेंशन को बार बार बाबा की ओर ले जाएगी, हमें बहुत सुख मिलेगा। तो सभी बाबा के दिल में अपना स्थान बनाएं और उसका सबसे सुंदर तरीका अपनाएं, अपने दिल में बाबा को बैठाएं। तो यही बात लास्ट में प्रत्यक्ष होगी, हर दिल में भगवान। ठीक है, तो स्वराज्य अधिकारी बनकर विश्व राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति। अब सभी ऐसे ही अभ्यास करेंगे, हम बाबा के दिल तख्त पर हैं, सुख संवतन में, अपने को देखें बाबा के सामने।